प्यार से कहना, आज यहाँ न्यूयॉर्क में जो सुंदर नजारा जिसका भाग बनने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है, और ऐसे ही इस कल्याण यात्रा पर जहाँ जहाँ भी जाने का अवसर मिला, चाहे वो लंदन से शुरुआत जब हुई और लगभग अब 5 हफ्ते हो चुके हैं दिल्ली से निकले, और आगे भी अभी काफ़ी लंबी यात्रा, पर जहाँ जहाँ भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ जहाँ भी संतों से मिले, तो यही सुंदर नज़ारा बनता चला गया। यही एक खूबसूरत सा भक्ति भरा माहौल, भक्ति भरा वातावरण। तो ख्याल इस बात पर जाता है कि ये सुंदरता का कारण क्या है, क्या जिस स्थान पर हम बैठे हैं वो, कि ये इतने अच्छे होटल का एक इतना अच्छा हॉल, एयर कंडीशन्ड, वेल लिट, वेल मेड, ब्यूटीफुली डिजाइंड, सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ, तो क्या ये सुंदरता का कारण बनता है? पर जब गौर से सोचा जाए और महसूस किया जाए, तो ये जो सुंदरता हम सब जिसका आनंद ले रहे हैं, ये जो वातावरण जिसका आनंद ले रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रेम और जो ये भक्ति भाव है, ये एक दूसरे के लिए जो सत्कार है, ये जो प्यार वाला वातावरण है, इन सुंदर नज़ारों के पीछे, इन नज़र नवाज नज़ारों के पीछे जो कारण है वो ये प्रेम। और दुनिया में भी, चाहे हम अपने रिश्तों में देखें, चाहे घरों में देखें, चाहे कहीं पर भी जाएं, सुंदर नज़ारे बनते ही ये प्रेम के भाव से हैं। एक दूसरे के लिए जब दिलों में प्रेम, सत्कार, कंपैशन, टॉलरेंस, काइंडनेस, एक्सेप्टेंस, व्हेन वी कैरी दीज वैल्यूज, व्हेन वी बिकम दीज वैल्यूज, when we become love, then only such beautiful relationships manifest, then only we can experience true bliss wherever we go. To jahan is sundar hall ka apna ek seemit sa yogdan hai, par wahin agar sab kuch ho aur ye prem ko yahan se nikal diya jaye, in bhakti bhav ko yahan se nikal diya jaye, to ye जितनी अच्छी, चाहे हीरे जवाहरात से जड़ी हुई जगह पर भी हम बैठ जाएं, ये सारी कुर्सियां जो आज प्लास्टिक की या फैब्रिक की हैं, ये सबको हीरे जवाहरात का भी बना दिया जाए, तब भी आनंद किसी को महसूस नहीं होगा अगर ये प्रेम के भाव को दरमियां से निकाल दिया जाए। तो जीवन में जो महत्वपूर्ण है वो भाव है। हम जितने कर्म कर रहे हैं, जितनी चीजें कर रहे हैं जीवन में, अगर वो भाव रहित हैं, प्रेम के बिना है, प्रेम से खाली हैं, तो वो बहुत ही सिर्फ और सिर्फ एक हरकत सी बन के रह जाती है शरीर की, एक कार्य, एक वेरी मैकेनिकल, आवर लाइफ बिकम्स वेरी मैकेनिकल इफ वी टेक आउट लव फ्रॉम इट, इफ वी टेक आउट दीज इमोशंस फ्रॉम इट। और जहाँ भक्ति की बात होती है, भक्ति तो पूरी की पूरी आधारित ही भाव पर है। भक्ति में, भक्त के अगर भाव को हटा दिया जाए तो कुछ बचता ही नहीं है। दुनियादारी तो फिर भी निभाई जा सकती है, सिर्फ निभाने के तरीके से, बिना भावों के। अक्सर हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हम कहते हैं हाँ बस निभा रहे हैं, दुनियादारी निभ भी जाती है, क्योंकि ऐसी दुनिया बनी है, समाज ऐसा है, निभ भी जाती है, पर भक्ति नहीं निभ सकती बिना भाव के, क्योंकि भक्ति के बीच में से भाव निकल गए तो भक्ति भक्ति रही नहीं, भक्त और भगवान का रिश्ता रहा ही नहीं। तो भाव जहाँ दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण एक सुंदर जीवन जीने के लिए, वहां भक्ति के लिए तो प्राण है वो भाव, और भाव खत्म तो मतलब प्राण निकल गए उस भक्ति के, वो भक्ति रही नहीं। तो इन भावों से रहित भक्ति झोली में आई है हम सबके, तो मुबारकबाद के पात्र भी बनते हैं, और अरदास भी यही बनती है कि ये जो भाव हैं जो भक्ति भाव है ये कहीं किसी छोटी छोटी बातों के चक्कर में इन प्राणों का हम खुद गलाना घोट दें। ये भक्ति के जो भाव हैं बड़ी ही किस्मत से, बड़े ही भागों से, सदगुरु की असीम कृपा से जीवन में आते हैं, अनुभव करने को मिलते हैं। तो कहीं अपनी मैं मेरी अपनी छोटी छोटी बातों की वजह से इन बहुमूल्य भावों का कत्ल हम खुद ना करते हैं। अक्सर दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हमने गंवाए हैं, बहुत सारे रिश्ते ऐसे खराब किए हैं, बहुत सारे ऐसे सुंदर नज़ारे हमने खराब किए हैं कि छोटी सी बात थी और बहुत बड़ी बन गई, था कुछ नहीं पर बहुत कुछ बन गया। शायर की पंक्तियां दास को याद आ रही हैं कि नजर नवाज नजारा बदल ना जाए कहीं, जरा सी बात है मुंह से निकल ना जाए कहीं। कि जो नजर नवाज नजारा है, ये नजरों को जो इतना सुकून दे रहा है नजारा, नवाज रहा है नजरों को इतना खूबसूरत नजारा, ये कहीं बदल ना जाए, जरा सी बात है कहीं मुंह से निकल ना जाए। कितनी ऐसी जरा जरा सी बातों की वजह से ऐसे कितने नजारे हमने खत्म कर दिए हैं, उन नजारों के प्राण निकाल दिए हैं। नजर नवाज नजारे बख्शिश से मिलते हैं ऐसे नजारे, और उनके प्राण हम खुद जरा सी बात जो मुंह से निकल जाती है। और अक्सर जिनके जीवन में थोड़ी सी भी चेतनता है, ऐसी जरा सी बात मुंह से निकाल के अक्सर जीवन में एक पल आता है जब लगता है कि काश चुप ही रह गए होते, ना कहा होता, इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं थी। उस वक्त जो बहुत बड़ा लग रहा होता है, थोड़ा सा समय बीतता है तो लगता है कि उस बात से तो मुझे कुछ खास फर्क पड़ा ही नहीं, पर फर्क जो पड़ता है वो जो मैंने उस जरा सी बात को मुंह से निकाल दिया, ताम्र कभी कभी उस फर्क की वजह से सारा जीवन सजा मात्र कट रहा होता है। तो ये जो जीवन का गणित है कि जरा जरा सी बातों से बच के इन जरा जरा सी बातों को अपने अंदर संभालें, बहुत विशाल बनाया है निरंकार ने हम सबको। कभी कभी हम अपने पोटेंशियल को नहीं समझ पाते और इसलिए फिर सदगुरु इस निरंकार के साथ जोड़कर विशाल करते हैं कि इतना बड़ा तो विशाल समुद्र, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर तेरे अंदर क्या लहर उठाएंगे। जाने दो उसको अपने अंदर, समाने दो उसको अपने अंदर, पर क्योंकि इस सत्य से मैं दूर हो जाता हूं तो जरा सी बात है मुंह से निकलना चाहे कहीं। तो ऐसी कितनी बातें हैं कि मेरा सत्कार, मेरा ये, मेरा वो, और जीवन का इतना साधारण सा गणित है कि जो खुद को गवाता है उसको तो सारी दुनिया उसके आसपास की उठाना शुरू कर देती है। गवाने को राजी तो हो पर कभी कभी पूरी उम्र निकल जाती है, जीवन का इतना साधारण सा गणित, द मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ, लेट गो ऑफ योरसेल्फ एंड यू शैल बी एग्जॉल्टेड, इज द सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ, बट इट टेक्स समटाइम्स लाइफ टाइम्स टू अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिक्स। और फिर सदगुरु बार बार युगो युगो से ये सहज अवस्था देने के लिए धरा पर आते हैं, स्थान स्थान पर जा रहे हैं, जाते रहे हैं, रूप बदल बदल कर बार बार मानव को यही एक संदेश कि हस्ती छटके वेग बुलेशा जिदा ना जपे तू ओ है, कि तू है कौन पहचान ले। दास से अक्सर ये सवाल सहज रूप में पूछ लिया जाता है जब कोई मिलता है कि आप कहते हैं कि मिशन सदगुरु कोई नया मैसेज नहीं लेके आया, दिस इज एन एज ओल्ड मैसेज विच द सदगुरु प्रोपगेट्स, देन व्हाई इज देयर अ नीड टू प्रोपगेट द सेम मैसेज ओवर एंड ओवर। अगर सत्य है तो तभी समझ आ जाता त्रेता में, सत्य है तो उसी युग में समझ आ जाता, गुरु क्यों बार बार रूप बदल रहा है इस सत्य को बताने के लिए? क्या इंसान इतना मूढ़ है कि उसको समझ नहीं आता? इतना मूर्ख है इंसान कि उसको समझ नहीं आता? और अगर मूर्ख है तो फिर ये इतनी पीड़ा क्यों ले रहे हैं उसके लिए? तो करुणा, कंपैशन तो इनका गुणधर्म है, और ये सारे का सारा जो सिलसिला चल रहा है, क्योंकि दिल में एक एक इंसान के लिए, गुरुओं के, पीरों के, पैगंबरों के दिलों में शुरू से ही, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ होगा, बहुत ही करुणा है, बहुत ही पीड़ा होती है जब देखते हैं कि क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। तो बात वही कि समझ क्यों नहीं आती जब इतनी बार, इतने सालों से सुन रहे हैं। कई बार तो अपने जीवन में देखते हैं कि इतने साल हो गए बात सुनते सुनते, समझ क्यों नहीं आई। तो एक कहानी पढ़ने को दास को मिली कि एक बार गौतम बुद्ध जी के पास कोई बहुत ही जिज्ञासा लेके पहुंचा, और जिज्ञासा तो थी ही थी, पर साथ साथ मन के अंदर बहुत उथल पुथल थी उस इंसान के। इतनी उथल पुथल के चेहरे से टपक रही थी वो उथल पुथल कि ना जाने कितने सवाल, कितनी परेशानियां लेके पहुंचा है इनके पास। जब शिष्य गौतम बुद्ध के पास, उनको भगवान बुद्ध के पास लेके जा रहे थे, तो शिष्य भी सोच रहा था, पता नहीं इतनी उथल पुथल लेके आया है, कहीं भगवान का तिरस्कार ही ना कर दे, कहीं कुछ ऐसा ना बोल दे, कहीं कोई बदतमीजी ना कर दे। पर फिर भी सेवा थी, वो लेके गया है। और जैसे ही वो उथल पुथल लेके आया हुआ इंसान भगवान बुद्ध के सामने बैठा, तो कुछ बोल ना पाया। भगवान बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, उसने उनकी आंखों में देखा। कुछ पल, कुछ मिनट ये सिलसिला चला, जो उथल पुथल थी चेहरे पे सब खत्म होती चली गई, शांति वहां बन गई, मानो जैसे जिस निर्वाण की भगवान बुद्ध बात करते हैं वो साक्षात नजर आने लगा। और वो रोने लगा उथल पुथल लेके जो आया, और थोड़ी सी देर में बस उनके चरणों में सिर झुकाया और चला गया, जैसे सब कुछ प्राप्त कर गया हो उन कुछ मिनटों में। अब जो शिष्य इस नजारे को देख रहा था, जो उसको लेके आया था, वो बहुत ही हैरान। उसने कहा, ये तो समझ नहीं आया, 30 साल से तो मैं इनके साथ हूं, ऐसा नजारा तो मैंने कभी नहीं देखा, या ऐसा कुछ तो मेरे साथ नहीं घटा, ये है क्या? रोक नहीं पाया खुद को, उसने पूछ लिया कि भगवान, इसको ऐसा क्या दिया जो आज तक हमें नहीं दिया आपने? क्योंकि लग रहा है इसको कुछ आपने अलग इसकी झोली में डाला है, क्योंकि 30 साल से तो मैं आपके साथ हूं, कुछ सालों से आसपास मेरे और आपके सेवादार हैं, शिष्य हैं जो साथ चल रहे हैं, पर किसी के साथ ऐसा नहीं देखा, ये क्या था? क्या इसको आपने कोई अलग ज्ञान दिया है, या हमें कुछ अलग दिया था? तो भगवान आगे से कहते हैं कि नहीं, मेरे पास तो एक ही चीज है देने को, सबको वही दिया है, इसको भी वही दिए, पर इसके लिए तो आपने कोई शब्द भी इस्तेमाल नहीं किए, ये क्या था? तो वो कहते हैं कि तू मेरा शिष्य बनने से पहले एक राजकुमार था, और तुझे घुड़सवारी का बहुत शौक था, तो तुझे उस भाषा में समझाता हूं जिससे तुझे शायद समझ आएगा, कि जब तू इतना सार्थक घुड़सवार था, तो तुझे पता होगा कि 4 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक पहली कैटेगरी, पहली प्रकार के घोड़े, जिनको जितना मार लो वो धस से मस नहीं होते, जब तक वो चाबुक उनकी हड्डियों तक नहीं पहुंच जाता तब तक हिलते भी नहीं अपनी जगह से। अगली कैटेगरी, अगला प्रकार, कि जिनको मारो तो चल पड़ते हैं, ना मारो तो रुक जाते हैं, मार मार के उनको चलाना पड़ता है, पर इतना बुरा हाल नहीं, इतने जड़ नहीं होते कि हड्डियों तक चाबुक पहुंचे। और फिर अगली कैटेगरी आती है कि जिसके लिए चाबुक को देखना ही काफी होता है, चाबुक को देखा और चल पड़ता है। और कहते फिर उसके बाद सबसे उत्तम जो घोड़े की कैटेगरी कि जिसको उसको देखना भी नहीं पड़ता, आवाज भी नहीं सुननी पड़ती उस चाबुक की, परचाही काफी होती है जिसके लिए। परचाही मात्र ही उसको बता देती है अब क्या करना है, कहाँ चलना है, किस तरफ जाना है। तो कहते हैं जो अभी होके गया ये वो परछाई वाली कैटेगरी का घोड़ा था। तो साथ संगत, इतने सालों से, इतनी सदियों से ये सिलसिला चले जा रहा है, क्योंकि इन्होंने हम जैसे जड़ घोड़ों पर उम्मीद नहीं छोड़ी है, हम जैसों को वापस नहीं मोड़ दिया कि तू मेरी कैटेगरी के लिए नहीं ठीक। जड़ से जड़ को भी चला रहे हैं, पत्थर जैसे जड़ को भी चला रहे हैं, और जड़ से जड़ को ये फिर उस उत्तम कैटेगरी का भी बना देते हैं जो परछाई से चल पड़ता है। ये सिर्फ सदगुरु कर सकता है और ये करता आ रहा है और करता जाएगा, इनका गुणधर्म है। पर कहीं थोड़ा सा कर्म हम सबका भी है कि हम अपनी कैटेगरी पहचाननी तो शुरू करें। पहचानेंगे तो शायद ग्रेजुएट भी होंगे अगली कैटेगरी तक, पहचानेंगे ही नहीं तो ग्रेजुएशन का कोई स्कोप नहीं रहता। तो दास अपने लिए यही अरदास करेगा कि जिस कैटेगरी में जहां भी ये रखना चाहते हैं खुशी से वैसे रह सकें, और जहां तक ये पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचने में हम खुद बाधा ना बने, मैं खुद बाधा ना बनूं अपनी इस रास्ते में जहां मुझे सदगुरु पहुंचाना चाह रहा है, जहां ना जाने कितने यत्न कर रहे हैं कि इसके जीवन में ये अवस्था आ जाए, इसके जीवन में ये आनंद आ जाए। उस आनंद की बाधा मैं खुद ना बना खड़ा रहूं अपने जीवन में, मैं अपनी राह में खुद दीवार बन के खड़ा हूं। वो आए तो किस रास्ते से आएगा। तो ये जो दीवार है हमारी अपनी, इसको गिराने का प्रयास हम करते चले जाएं। और सदगुरु माता जी से यही अरदास है कि जैसा जीवन आप जी चाहते हैं हर एक संत का वैसा जीवन बनता चला जाए। प्यार से कहना।